ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयां उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टकी भक्तिरा भवते नैष्टके भक्तिरा भवते नैष्टके ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद पांच अध्याय पंद्रह जिसका शीर्षक है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। श्लोक श्रृंखला 16 से पाठ किया जाएगा। श्लोक 14 और 15 इन श्लोकों का श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य न होने के कारण हम श्लोक 14 और 15 का उच्चारण करेंगे और श्लोक नंबर जो 16 है उसका हम शब्दों का और अनुवाद शब्दार्थ तात्पर्य का वर्णन करेंगे। तो श्लोक नंबर 14 और 15 का मैं केवल उच्चारण करूंगा। गयाद गयांतम चित्रत चित्रत सुगतिर अवरोधना इति त्रय पुत्र भाभू चित्र राद उरन्याम सम्रद अजानिष्ट तथा उत्कालयम मारीचिर मारीचिर बिंदु मत्तिम बिंदुम अनुदापदयत तस्माद्श्राद्धयम् मधुर नामाद्भवम् मधु सुमनसि विराव्रत ततो भोजायम् मन्तु प्रामन्तु जाजनाते मन्तु सत्तयाम् भावनास्ततो दुषा दुषान अयम त्वष्टा जनिष्टा त्वष्टुर विरोचानयम विरोच विराजस्य सत्यजीत प्रावरम पुत्र सत्तम कन्या च विशु यम कील जातम। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, गयंती के गर्भ से महाराज गए के तीन पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्ररथ सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ के पत्नी उर्ना से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला तथा उसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि के पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सर्गा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंतु तथा प्रमंतु नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। मंतु की पत्नी सत्या से भोवन नाम का पुत्र और भोवन की पत्नी दुष्णा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से वीरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुची के गर्भ से 100 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में सत्यजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। श्लोक नंबर 16। इस श्लोक का शब्द इस प्रकार है, तत्र अयम श्लोक प्रयावृतम वंशम इमाम विरजा चर्म उद्भव अक्रोत अति अलम कृत्या विष्णु सुरगणम यता तत्रयम् श्लोक तत्रयम् श्लोक प्रियव्रतम् वंश इमाम् प्रियव्रतम् वंश इमाम् विरज चर्मोद्भव विरज चर्मोद्भव अक्रोध अति अलम कृत्या अक्रोध अति अलम कृत्या विष्णु सुरगणम यता विष्णु सुरगणम यता। श्लोक में आए शब्द और उसके अर्थ कृपा करके मेरे बात सभी दोहराए। तत्र उस प्रसंग में अयम श्लोक इस प्रसिद्ध श्लोक यह प्रसिद्ध श्लोक है। प्रियव्रतम राजा प्रियव्रत से चलने वाला वंश वंश इमाम यह विरजा राजा विरज चर्म उद्भव 100 पुत्र जिनमें सत्यजीत सर्वोपरि था। अक्रोत अलंकृत किया, अति अलम अत्यधिक, कृत्या अपनी कीर्ति से, विष्णु भगवान विष्णु श्री भगवान, सूरगणम देवतागण, यता जिस प्रकार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने ऊंच गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। तात्पर्य पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। उसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प से दी जाती है। उसके कारण पूरा वंश इतिहास प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया, अतः यदुवंश तथा यादव लोगों सर्वदा के लिए विख्यात रहे हैं। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का वंश सदा ही प्रसिद्ध रहा है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोआभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साधवैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा हर्ष उल्लास और आनंद का अनुभव हो रहा है। आप सब भक्तों का संग प्राप्त करके अपने आप को बड़ा सौभाग्य मान रहा हूं कि ब्रजवासियों का संग प्राप्त हो रहा है। तो वक्ता है, जब तक श्रोताओं का आशीर्वाद नहीं होता है तो वो कुछ कह नहीं सकता। ये हमारा परंपरा है कि श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं, तब जाके श्रोता कुछ कह पाते हैं। सूत जाने से भद्रम थे, सारे ऋषियों ने सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से इस परंपरा को जारी करते हुए रखते हुए आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ सेवा कर पाए। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आइए आज के इस श्लोक की और कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा सुंदर यह प्रसंग चल रहा है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के इस वंशज का वर्णन आ रहा है। राजा उत्थानपाद का वर्णन हमने चतुर्थ स्कंद में श्रवण किया और ये पंचम स्कंद पूरा राजा प्रियव्रत और उनके वंशज का वर्णन। बड़ा सुंदर चरित्र राजा प्रियव्रत का है। नाम भी बड़ा प्रिय, बहुत ही सुंदर है, प्रियव्रत। स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र हुए प्रियव्रत, जिन्होंने ऐसा एक व्रत लिया कि हम भगवान के प्रिय हो, इसलिए प्रिय व्रत। वो ब्रह्मचारी रहे, ऐसा व्रत लिए कि हम भगवान के प्रिय बने, और गृहस्थ आश्रम में भी गए तो भी ऐसा व्रत धारण किए कि हम भगवान के प्रिय हो। ऐसे महाराज प्रियव्रत के चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेकर हमें भी व्रत लेना चाहिए कि हम भी भगवान के प्रिय हो। रोज प्रातः हम गाते हैं गुरु अष्टकम में, गुरु अष्टकम के जो सातवां पंक्ति है उसमें हम कहते हैं साक्षात हरित्रेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तता भाव अतएव सति। तो ये जो है ऐसे गुरु ऐसे भक्त जो अपने जीवन जो है भगवान को प्रिय करने के लिए लगा देते हैं, पूरा शास्त्र उनका गुणगान करते हैं, किंतु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। जो अपना जीवन पूरा भगवान को प्रिय करने के लिए लगा देता है वो प्रिय व्रत है। ऐसे भक्तों का गुणगान पूरा शास्त्र करते हैं, कहते हैं कि वो साक्षात हरि जैसे ही है। क्यों? किंतु प्रभु या प्रिय तस्य, क्योंकि अपना जीवन भगवान को प्रिय करने के लिए लगा देते हैं। तो हमें भी चाहिए ये जो दुर्लभ मानव देह हमें प्राप्त हुआ है इसे ऐसे व्यर्थ होने ना जाए। हमें ऐसा व्रत लेना चाहिए कि हम भी भगवान के प्रिय हो जाए। तो ऐसे महाराज प्रिय व्रत का सुंदर वंश का वर्णन आ रहा है। इसमें एक से बढ़कर एक महान भक्तों का वर्णन आता है। उन भक्तों का वर्णन, उनका चरित्र 15 श्लोकों में आता है इस पांचवे स्कंद के 15वें अध्याय में। एक के बाद एक, एक एक जितने भी प्रियव्रत राजा के वंश में भक्त हुए वे सब एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त हुए और उनका नाम का उच्चारण मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को इस पावन पवित्र इस वंशज का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज को पता है परीक्षित महाराज जी के जीवन में समय बहुत कम है। यहां वहां की बातें तो कदापि नहीं करेंगे, केवल और केवल ऐसे चरित्रों का, ऐसे भक्तों का नाम उच्चारण किया जाएगा जिससे परीक्षित महाराज जी का जो चित्त है और भी उज्जवल और पवित्र होता जाए। तो उस वंशज में अब एक और राजा का वर्णन हो रहा है, जिस राजा का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अनुवाद में लिखते हैं, राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो श्लोक यहां पे हम देख रहे हैं, तत्रायम श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तब जाके सुखदेव गोस्वामी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हो गए जिस प्रकार भगवान विष्णु अपने दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते। तो ये राजा विरज के ऊंचे गुण, तो कौन से गुण है जिससे राजा विरज इस वंश के मणि हुए? ये सारे गुणों का, वैष्णव गुणों का जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, जिसका वर्णन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं कि यह गुण हर एक वैष्णव के कंठ में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, जीवा में होना चाहिए। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक में उच्चारण करते, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तन्य सरे। ऐसे सुंदर गुणों से युक्त महाराज विराज हुए, जिनके कारण से ये जो प्रियव्रत के वंश है वो और भी सुशोभित हुए और उस वंश के वो मणि हुए। अगर ये गुण हमारे अंदर हम पाएंगे तो हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी एक मणि हुए, कौन कौन से गुणों के कारण? उच्च गुणों के कारण। और वो गुण क्या है और उनकी क्रिया क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे अलाहाबाद में, वे वैद्य या दवाई के एक उनका व्यापार करते थे और उनके दुकान में अनेक अनेक प्रसिद्ध व्यक्तित्व आते थे। यहाँ तक कि कहते हैं कि नेहरू और मोतीलाल नेहरू भी आया करते थे। और छोटी सी एक बालिका भी आया करती थी, उनका नाम आगे जाकर इंदिरा गांधी हुआ जो कि भारत के राष्ट्र या प्रधानमंत्री हुए। श्रील प्रभुपाद जी ही इन दवाइयों का वितरण करते थे, व्यापार करते थे। तब उनके एक गुरु भाई आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हुए। प्राय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी शिष्य हुए वे सब प्राय बंगाली हुए, एक से बढ़कर एक, सब अच्छे पढ़े लिखे उन्नत नौजवान, पर प्राय सभी लोग बंगाली थे। पर एक जो था उनका नाम था ओबीएल कपूर, तो अलाहाबाद के रहने वाले थे, वो बंगाली नहीं थे। उन्हें प्रभुपाद जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि प्रभुपाद जी हिंदी में बात कर सकते थे और अंग्रेजी में भी बात कर सकते थे, तो अच्छा लगता था। एक दिन ओबीएल कपूर जी आए, बोले मुझे दवाई चाहिए। तो बोला दवाई है आपके सेवा में, लीजिए। नहीं, ये दवाई नहीं, मुझे वो दवाई चाहिए। तो बोला कौन सा दवाई? जो आप ले रहे हैं। मैं कौन सा दवाई ले रहा हूं? तो कहा स्पष्ट रूप से, कृष्ण प्रेम का दवाई चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा यह दवाई मैं कदापि नहीं दूंगा। नहीं दोगे? तो बोला नहीं दूंगा। तो बोले कृपा कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं दवाई नहीं दूंगा पर उसका सूत्र दूंगा आपको, उसका फॉर्मूला दूंगा। फिर प्रभुपाद जी बड़े भाव विभोर होकर कहे फॉर्मूला ले लो, वो क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि। ये सूत्र लेकर मैं विश्व में पूरा हरि नाम का, कृष्ण प्रेम का प्रचार करूंगा और सबको मैं भक्त बनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा। यह है श्रील प्रभुपाद जी के अंदर वो ऊंचे गुण और ये क्रिया। वास्तव में जो इस प्रकार का भाव रख अपने अंदर धारण करते हैं, जैसे रविवार के प्रातः परम पूज्य नवगेंद्र महाराज जी बता रहे थे अपने प्रवचन के दौरान, प्रवचन के अंत में सुंदर सा एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित गा रहे थे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। ये भजन में भक्त क्या याचना करते हैं? गुरुदेव ऐसे कृपा कीजिए ताकि हमारे अंदर ये त्रिन से भी अधिक विनम्र होने का भाव, सहनशील होने का भाव, औरों को सम्मान देने का भाव जागृत हो जाए। तो ये भाव का वर्णन कर रहे थे महाराज जी। तो ये भाव पूरे प्रभुपाद जी के अंदर पाए जाते हैं। तब जाकर कोई पूरे विश्व में भगवान के लीलाओं का प्रचार कर सकते हैं, उनके नाम का प्रचार कर सकते हैं, उनके संदेश का प्रचार कर सकते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, वो भक्त मेरा सबसे प्रिय है जो यह संदेश पूरे विश्व में औरों को और भक्तों को देता है। वो कब होता है? जब श्रील प्रभुपाद जी के का जब वर्णन आता है, तब ऐसा भी वर्णन आता है कि उनके एक अनन्य भक्त, आप सब जानते ही होंगे, आत्मतत्व प्रभु। आत्मतत्व प्रभु वृंदावन में प्रभुपाद जी से मिले थे, लोकनाथ स्वामी महाराज उन्हें प्रभुपाद जी से मिलाए थे। मायापुर में आगे जाके उन्होंने बहुत सेवा किए गुरुकुल इत्यादि को, बड़े अनन्य भक्त हुए प्रभुपाद जी के। एक दिन वो बैंगलोर में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, ये प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद की घटना है। तब एक सज्जन के घर गए और वो सज्जन उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित किए थे। बोला, आप क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं ग्रंथों का वितरण कर रहा हूं, हमारे गुरुदेव ने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, कृपा करके आप लीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, दिखाइए आपके गुरुदेव के ग्रंथों को। तब जैसे ही उन्होंने कृष्ण बुक दिया और उन्होंने पलट कर देखा प्रभुपाद जी के सुंदर छवि को, चित्र को, तब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाए, बोला, एक माप करने के लिए स्केल होता है, आप जानते हैं स्केल, पट्टी बोलते हैं, पट्टी दीजिए। और तुरंत प्रभुपाद जी के जो चित्र है, उस चित्र में प्रभुपाद जी के जो माता है, सर है, फोरहेड है, उसका माप लेने लगे, लंबाई और चौड़ाई। और कहा आत्मतत्व प्रभु से, आपके गुरुदेव कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये कोई साधारण आचार्य नहीं है, क्या मुझे आपके गुरुदेव का पूरा आप तस्वीर दे सकते हो, फोटो देख सकते हो? तो बोला हाँ। और एक ग्रंथ से प्रभुपाद जी के पूरा तस्वीर लिखा, फिर से वो अपने पट्टी लेकर माप जारी किया, बोला, आपके गुरुदेव के माध्यम से श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय के आचार्य वर्तमान में कार्य करेंगे और कर रहे हैं। अर्थात प्रभुपाद जी के शारीरिक लक्षण से वो एक ज्योतिष थे, बड़े विद्वान थे, कहे कि इनके माप सर का और शरीर का माप से ये जारी होता है, ये ऐसे सज्जन है, ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे आचार्य है, ऐसे महाभागवत है, जिनके माध्यम से रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार का आचार्य अपना कार्य कर रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आप उनके एक अनन्य सेवक और भक्त हो। मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मान रहा हूं क्योंकि मैं एक शैव्य हूं, शिव जी के मैं भक्त हूं, और इस जीवन में मैं शायद ही ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य हो पाऊंगा या उनके इस आंदोलन में जुड़ पाऊंगा। अगर आपका कृपा होगा तो मैं अगले जन्म में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, जिसके संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है, उसमें मैं जरूर जन्म लेकर एक भक्त बनूंगा। श्रील प्रभुपाद की। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी, जो उनके ऊंचे गुण और उनके कार्य के कारण ब्रह्म मध्व घोड़े संप्रदाय के मनी हो रहे हैं। जिस प्रकार से वो राजा विरज प्रियव्रत महाराज के वंश के मनी हुए, श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया, अतः यदुवंश तथा यादव लोगों को सर्वदा के लिए विख्यात कर दिए। तो आप सब जानते हैं किस प्रकार से यदु महाराज का त्याग, जब
ययाति महाराज वृद्ध हो चुके थे, अर्थात श्रापित हो चुके थे। शुक्राचार्य आप सब जानते हैं कथा को, बड़े संक्षेप में मैं बताऊंगा प्रसंग के और प्रस्थान करूंगा। जब श्रापित हुए कि आप मेरी कन्या से विवाह करके दूसरे स्त्री से भी विवाह कर लिया, आप अपने शरीर और यौवन का इतना घमंड है, श्रापित कर दिया तो एकदम वृद्ध हो गए। तो उनकी बेटी रोने लगी, बोली पिता आपने क्या कर दिया, आखिर वो मेरा पति, अब मेरा क्या होगा। तब शुक्राचार्य कहा कि ठीक है बेटी, इन शब्दों को मैं वापस तो नहीं ले पाऊंगा, पर ययाति महाराज अपने पुत्र को अपना बुढ़ापा देंगे तो पुत्र का जवानी ययाति महाराज को प्राप्त होगा। ययाति महाराज के प्रथम पुत्र हुए यदु महाराज। यदु महाराज के पास जब गए, यदु महाराज जो कि विख्यात है बहुत ही विनम्र और बहुत ही आज्ञाकारी होने का, पर जिस समय ययाति महाराज कहे बेटा आप क्या मुझे अपना जवानी दोगे, ययाति महाराज के इस प्रस्ताव को, अपने पिताजी के प्रस्ताव को गुरु तुल्य, अपने पिता के इस प्रस्ताव को यदु महाराज ने आज्ञाकारी होते हुए भी नकार दिया। ययाति महाराज के नजरों में वो गिर गए, सारे प्रजा के आंखों में वो गिर गए, लोग उनका निंदा करने लगे, उनका इस त्याग को कोई जान नहीं पाए, पर भगवान उनके इस त्याग को जान पाए। वो ये त्याग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक शरीर हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा, तो प्रातःकाल मंगल आरती में हम आ सकते हैं, 16 माला का जब ठीक से कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्तों का सेवा कर सकते हैं, वैष्णवों का सेवा कर सकते हैं। और अगर वृद्ध हो जाएंगे और यह अभ्यास नहीं होगा तो भक्ति बहुत ही कठिन हो जाएगा। यह त्याग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए था, पर लोग निंदा करने लगे, सबके नजरों में वे गिर गए, पर भगवान के नजरों में वो हमेशा ऊंचे रहे। और उनके इस त्याग को ध्यान में रखते हुए द्वापर युग में भगवान यदुवंश में प्रकट होते हैं और पूरे यदुवंशी और यादवों का ख्याति हमेशा के लिए बढ़ाते हैं। यह है त्याग। हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए कभी कभी त्याग करते हैं। दुनिया के लोग हंसते हैं, क्या है सुबह सुबह जल्दी उठते हो, राम राम करते हो दिन भर, और कुछ काम नहीं है दुनिया में, इतने सारे चीज करने के लिए, परिवार को देखभाल करना है और मौज और बहुत सारे इंद्र तृप्ति की कार्य करना है, आप क्यों फंसे वो, ये जीवन चला जाएगा, ना तो यहां का आपको आनंद मिलेगा ना तो वहां का, आप बीच में लटकते रह जाओगे। इस प्रकार से लोग तिरस्कार करते हैं, लोगों की नजर में हम गिर जाते हैं, कैसे हो तुम, परिवार का देखभाल नहीं कर रहे हो, केवल राम राम करते जा रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, तो लोग निंदा करते हैं। पर हमारा जो त्याग है, ये त्याग लोगों के नजर में भले बहुत ही तुच्छ हो, निकृष्ट हो, निंदा लोग भले करे, पर भगवान के नजरों में हमेशा ऊंचा रहेगा। तो हमें कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम लोग भगवान का भक्ति कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी का त्याग शायद दुनिया जानती होगी। श्रील प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित आंदोलन को स्थापित किए, उनके इस आंदोलन में अनेक अनेक तरुण तरुणी आने लगे, तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आने लगे। जब प्रभुपाद जी इन तरुणियों को देखते थे, खास करके मालती माता जी, यमुना माता जी, शारद्या माता जी, गोविंद देवी माता जी, इन सब तरुण थे, 17-18-19 साल के। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आता था और वो अपने बेटी की तरह उन्हें मानते थे और कहते थे कि ये जितने भी ब्रह्मचारिणी हैं उन सब का शीघ्र अति शीघ्र विवाह होना चाहिए। शीघ्र अति शीघ्र इन सब ब्रह्मचारिणियों का विवाह हो जाना, क्योंकि वो बेटी की तरह मानते थे। 17-18-19 साल के वे सब थे, सेवा में लगे हुए थे और कालांतर में सबका विवाह जरूर प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से किया, कन्या मानकर, पुत्री मानकर। पर हाल ही में हम यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, 4 महीने पहले या 5 महीने पहले यह दुखद खबर हमें प्राप्त हुआ कि प्रभुपाद जी के सुपुत्री कन्या जो है उनका तिरभाव हो गया है और उनकी कन्या जो है, जो कन्या है यानी कि पुत्री है जो पिता के लिए हमेशा प्यारी होते होता है, आप अगर प्रभुपाद जी के कितने भी गृहस्थ आश्रम के चित्र देखोगे तो वह एक बालिका को हाथ में लेकर अपने गोद में लेकर उनका चित्र आप पाओगे, वो उनकी कन्या थी। पर जब श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ या प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव के आज्ञा को पालन करने के लिए जब अमेरिका गए तो गए, वो अपने परिवार को त्याग जो किए, वो त्याग को संसार जान नहीं पाए, यहां तक कि वो और अपने जो शिष्य हैं उनका तो विवाह कर रहे हैं अपने कन्या मानकर, पर उनकी जो बेटी है जो उनकी आंखों की तारा हुई या उनके सबसे प्यारा उनकी पुत्री हुई, उनका उन्होंने विवाह तक का परवाह न करते हुए, ना पीछे मुड़ते हुए सीधा अपने गुरुदेव भगवान कृष्ण के इस आंदोलन को प्रचार करने के लिए आगे बढ़े। समाज के नजरों में, परिवार के नजरों में, लोगों के नजर में वो तुच्छ हुए, निंदनीय हुए, उनका त्याग को कोई ना जाने, पर भगवान उनके त्याग को जाने। आगे हमें पता लगा उनकी बेटी जो है वो पूरे जीवन ब्रह्मचारिणी रही, वो अपने छोटे भाई के घर में या बड़े भाई के घर में कलकत्ता में रही, पर वो विवाह नहीं किए। क्या प्रभुपाद जी को उनकी बेटी का जो उनके प्रिय था उनके लिए कोई मन में जगह नहीं था? जरूर था, उनके परिवार के लिए भी जरूर था, पर त्याग किसके लिए किया? भगवान के लिए। उस प्रकार का त्याग अगर होगा जिस प्रकार से यदु महाराज ने त्याग किया तो भगवान उस त्याग को कभी भूलेंगे नहीं, और उस प्रकार के कार्य बहुत ही ऊंचा होता है। तब इस प्रकार का कार्य जब कोई करते हैं तो वो उस वंश के, उस संप्रदाय के मणि हो जाते हैं। जिस प्रकार से विरज महाराज मणि हुए, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक मणि हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ टीका टिप्पणी तो वृंदावन चंद्र प्रभु है, थोड़ा सा रोशनी प्रकाशित कर सकते हैं, टूटी को प्रकाशित कीजिए, हम आप सबके कृपा चाहते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद, आप सब ने सेवा का अवसर दिया और सहन किए मुझे। हरे कृष्णा।